वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। अध्याय दूसरा, श्लोक क्रमांक कौन सा श्लोक हमने लिया पिछले हफ्ते? सातवां श्लोक। और कौन सा श्लोक था? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जिसमें अर्जुन अब शरणागत भगवान को हुए। ये समझना बहुत आवश्यक है कि अर्जुन अब तक प्रथम अध्याय से लेके सातवें श्लोक और आज का भी श्लोक, इतने सारे श्लोकों तक अर्जुन बोल रहे हैं, अर्थात भगवान सुन रहे हैं। तो अब तक हम अर्जुन के ऊपर सब गौर किए थे कि अर्जुन के ये तर्क, अर्जुन के वो तर्क, और अर्जुन ने कहा भगवान को कि रथ मध्य में लेकर स्थापित कीजिए। तो यदि हम भगवान पर कैमरा डालें तो भगवान क्या कर रहे थे? केवल श्रवण कर रहे थे, केवल सुन रहे थे। अर्जुन जो कुछ बोल रहे थे भगवान सुन रहे थे, केवल सुन रहे थे। तो भगवद गीता के प्रथम अध्याय से हम भगवान से क्या शिक्षा लेते हैं? अर्जुन से तो हम ये शिक्षा ग्रहण करते हैं कि कैसे अर्जुन भ्रमित हुए अपने सगे संबंधियों को देखकर। तो प्रथम अध्याय तो भगवान ने तो एक शब्द नहीं कहा। तो भगवान से क्या शिक्षा ली हमने? हाउ टू बिकम अ गुड लिसनर। क्योंकि भगवान अब अर्जुन की ये जो दुविधा मन स्थिति है, ये जो समस्या अर्जुन की है, धर्म संकट अर्जुन जो जिसमें गिर चुके हैं, इससे अर्जुन को मुक्त कराने वाले हैं। अर्थात भगवान ये सिखा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव की समस्या यदि सुलझानी है तो सबसे पहले जो व्यक्ति उसे सुलझाने वाला है उसे बहुत अच्छा श्रोता होना चाहिए। अर्थात भगवान से अच्छे प्रवक्ता कौन हो सकते हैं और भगवान से अच्छे श्रोता भी कौन हो सकते हैं कि भगवान ने ये सब कुछ श्रवण किया, सुना और उसके पश्चात फिर समाधान दिया, भगवद गीता सुनाई। तो मैं आज बंबई से जब आ रहा था तो रास्ते में कुछ लिसनिंग के ऊपर विशेष कुछ कोट्स मुझे मिले, तो अब उसे मैं हिंदी में नहीं अनुवादित कर सका, तो मैं आपको अंग्रेजी में यहां पर दिखाऊंगा और बहुत से आप तो समझ जाएंगे, और यदि नहीं समझे तो उसे हिंदी में हम प्रयास करेंगे। अ मैन हैज टू इयर्स अगेंस्ट वन माउथ, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक। कि हमारी सारी इंद्रियों को हम यदि देखें तो ये जो जिह्वा है ये एक ही है, बाकी सब दो दो हैं। ये जो नासिका है ये दो है, कान दो है, आंखें दो हैं। तो ये कान और जिह्वा का बहुत घनिष्ठ संबंध है। दो कान यहां इस मुहावरे के अनुसार ये दो कान हमें इसलिए दिए हैं ताकि हम ज्यादा अच्छी से श्रवण करें बोलने से पहले, कुछ बोलने से पहले अच्छी से सुने। तो भगवान ने अपने उदाहरण से यहां पर सिखाया। द वर्ड लिसन कंटेन्स द सेम लेटर्स एज द वर्ड साइलेंट। आप यदि देखो ये जो वर्ड लिसन है, मैं ये वर्ड लिसन के ऊपर सोच रहा था और मैंने इसको जब उलट पुलट कर कर देखा तो साइलेंट अर्थात एक श्रोता को शांत होना चाहिए। किस लिए शांत होना चाहिए? सोने के लिए नहीं, श्रवण करने के लिए। लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न, बिकॉज इफ यू आर नॉट लिसनिंग देन यू आर नॉट लर्निंग। तो यहां पर हम, यहां पर कुर्सियां कुछ खाली हैं, आप लोग ये कुर्सी खाली ले सकता है कोई, वहां पर भी एक खाली कुर्सी। Just give some people are sitting on the floor. आप लोग यहां बैठ सकते हैं बच्चों, थोड़ा अंदर। बच्चों का हाफ टिकट होता है ना इसलिए। तो अब हम पिछला श्लोक जो था, अर्जुन शरणागत हुए, शरणागति अर्जुन ने दिखाई, तो हम एक ओवरव्यू लेंगे कि अर्जुन किन किन स्थितियों से गुजरे शरणागति तक पहुंचने के लिए, अर्जुन किन किन स्थितियों से गुजरे, ये जानना बहुत आवश्यक है। और ये जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम भी यदि भगवत गीता श्रवण करना चाहते हैं तो हमें भगवत गीता अर्जुन की शरणागति के भाव में करनी। जब तक अर्जुन के शरणागति के भाव में हम भगवत गीता श्रवण नहीं करेंगे तब तक भगवत गीता का श्रवण किसके समान होगा? धृतराष्ट्र, उसने भी श्रवण किया था लेकिन वो शरणागत नहीं हुआ था। तो यदि हम अर्जुन की स्थिति देखें प्रथम अध्याय से, तो सबसे पहले सर्वप्रथम अर्जुन का दृष्टिपात हुआ। दृष्टिपात आप समझते हैं? देखना। तो अर्जुन का दृष्टिपात हुआ किस पर? Some more chairs are empty over here. If somebody can just take those chairs behind for them. तो सबसे पहले अर्जुन का दृष्टिपात किस पर हुआ? दृष्टिपात भीष्म, द्रोण इत्यादि, उन पर अर्जुन का दृष्टिपात हुआ। अब हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। टेक दिस चेयर ऑल्सो, देयर इज वन चेयर एम्प्टी हियर, ऑल चेयर्स आर एम्प्टी, कोई अदृश्य तो नहीं बैठा ना वहां पे। ऊपर से स्पेस मैनेजमेंट। तो अर्जुन का दृष्टिपात हुआ कुरुसेना पर। अब अर्जुन का दृष्टिपात कुरुसेना पर होना ये कोई अचरज की बात है? और किसी का दृष्टिपात कुरुसेना पर नहीं हुआ? वहां पर तो युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ये सब भी तो देख रहे थे। क्या ये इन्होंने अपना दृष्टिपात कुरुसेना पर नहीं किया? किया। अब सामने आमने सामने ये दोनों तैनात सेना तो एक दूसरे को तो देख ही रहे थे। तो अर्जुन के दृष्टिपात में और अन्य पांडवों के दृष्टिपात में क्या अंतर है? कुछ अंतर है हाँ या ना? क्या अंतर हो सकता है? अब युधिष्ठिर महाराज तो भगवान को आके नहीं बोले, भगवान मेरा धनुष सरक रहा है, मुझे सुनाइए गीता। अत अर्जुन के दृष्टिपात में और मान लीजिए युधिष्ठिर महाराज के दृष्टिपात में क्या अंतर था? हाँ नहीं, वो तो खैर ठीक है, अर्जुन के साथ भगवान थे, परंतु यहां पर हम ये पूछ रहे हैं कि अर्जुन तो भगवान को थोड़ी देख रहे हैं, तो उनको देख रहे हैं ना, दृष्टिपात किस पे हो रहा था? भीष्म, द्रोण, इन पर दृष्टिपात हो रहा था। सबसे ज्यादा दुख अर्जुन को हुआ। हाँ, अर्जुन बहुत निकट थे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, सबसे ज्यादा चहीते द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन थे और भीष्म पितामह के लिए भी बहुत चहीते अर्जुन थे, ये भी एक कारण। और हाँ, दृष्टिपात के बाद अर्जुन में ये देखे गए आसक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण एक भाव अर्जुन के अंदर देखा गया जो अन्य पांडवों में नहीं देखा गया, आसक्ति इनके प्रति। अर्थात हमने इसकी चर्चा हमारे पिछले भी सिटिंग में की थी कि हमारी इंद्रियां ऐसी हैं कि बहुत बार हम जब कोई वस्तु को देखते हैं तो देखने के बाद आसक्ति जागृत होती है। जैसे मैं आज वो एक ट्रेन से आया ना बॉम्बे से, यहां जनशताब्दी एक्सप्रेस, तो आप देखे होंगे ये जो बॉम्बे नासिक ट्रेन, पंचवटी, तपोवन, ये सब ट्रेन में ये फेरी वाले घूमते रहते हैं, कोई बटाटा वाड़ा बांट रहा है, कोई समोसा बांट रहा है, कोई क्या बांट रहा है, चॉकलेट बांट रहा है, कोई बिस्किट बांट रहा है। तो मैं देख रहा था कि 90% लोग ये फेरी वालों से खरीद रहे थे देखने के बाद। अब उसमें वो पैंट्री वाला भी आया था, वो पैंट्री वाला सबसे वो ऑर्डर लेता है ना, क्या आपको नाश्ता चाहिए सब, वो केवल ऑर्डर लेने आया था। तो ऑर्डर लेने आया तो एक व्यक्ति उसने अपना ऑर्डर दिया कि मुझे कुछ कुछ ऑर्डर दिया उसने, कुछ कटलेट वगैरह चाहिए उसे, तो उसने ऑर्डर दिया। अब ये ऑर्डर लेने जो आया था, ये साथ में कटलेट लाया नहीं था, ये केवल पेपर पेन लेकर आया था। तो हुआ क्या कि उसने, इस व्यक्ति ने, ये पैसेंजर ने ऑर्डर तो दे दिया, उसके बाद में वो फेरी वाला आया कटलेट लेके, जो रेलवे का नहीं था, तो इसने उससे ले लिया और बाद में उसको बुलाया, वो ऑर्डर कैंसिल। आपने तो ऑर्डर दिया अभी, नहीं 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 अभी, हाँ हो गया हमारा। तो मैं देख रहा था कि देखने के बाद इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि अभी ऑर्डर पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कटलेट पता नहीं कितना लेट होगा। तो होता है ना कई बार, वो छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा होता है, वो जो भी छोटे बच्चे बैठे उनके सामने घुमाते खिलौनों को, और फिर वो छोटे बच्चे देखने, यही चाहिए मुझे, अरे ये कल तो अपने घर पे 20 हैं ऐसे, नहीं ये वाला, इसके हाथ में जो है वो चाहिए। तो आसक्ति जागृत होती है किसी वस्तु को देखने के पश्चात, परंतु केवल इतना ही काफी नहीं है। यहां पर हम देख रहे हैं कि अर्जुन ने अपनी आंखों से भीष्म और द्रोण को देखा, और फिर मानसिक रूप से उनको देखा, केवल आंखों से नहीं। इसलिए ये आसक्ति उनके अंदर की भावना है। तो यहां पर आसक्ति दृष्टिपात के पश्चात अर्जुन में देखी गई। आसक्ति के पश्चात अब अर्जुन तर्क वितर्क करने लगे। आसक्ति को पकड़कर अर्जुन धर्मशास्त्र कोट करने लगे, लौकिक तर्क, इस भौतिक संसार का तर्क, मटीरियल आर्ग्यूमेंट्स जिसे कहेंगे। अर्थात यहां पर यह समझ में आ रहा है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर आसक्ति जागृत होती है, तो यदि व्यक्ति बुद्धिमान है तो उस आसक्ति को जस्टिफाई करता है कि वो गलत नहीं है। ही स्टार्ट्स जस्टिफाइंग हिज अटैचमेंट्स एंड क्रिएट्स अ फिलॉसफी। जैसे बहुत से इंद्रिय भोग करना चाहते हैं और जानते भी हैं कि ये इंद्रिय भोग हानिकारक है, सही नहीं है, यहां तक कि कई इंद्रिय भोग पाप हैं, पाप की श्रेणी में आ जाते हैं, परंतु फिर भी उसको जस्टिफाई करना शुरू करते हैं, तर्क देना शुरू करते हैं कि नहीं कैसे ऐसे। बहुत से लोग ये जैसे हरे कृष्णा वाले कांदा लहसुन और चाय कॉफी नहीं लेते, तो इसको लेके अलग अलग कोटेशंस, कहां कोई मेडिकल बुक से कि कैसे प्याज लहसुन आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके इसके लिए अच्छा है, आपके उसके लिए अच्छा है। हाँ सब ठीक है। जैसे मैं पिछले हफ्ते बंबई था, तो बांद्रा में एक मैं प्रोग्राम कर रहा था वहां पर किसी के घर पे, तो ये लोग नए लोग थे, तो मैं अकेला इस्कॉन का रिप्रेजेंटेटिव वहां पर गया था और बाकी सब लोग नए थे वहां पे, तो उनको सबको बताना पड़ रहा था कि कैसे कीर्तन किया जाए सब कुछ। तो जो कुछ उन्होंने पकाया था वो सब उनके उनके तरीके से था, तो मुझे भी कहे खाने के लिए, मैं नहीं मैं ये सब नहीं ले सकता। क्यों? मैंने कहा मैं प्रसाद खाता हूं भगवान का, ये इसमें प्याज लहसुन आप लोग डालें वो नहीं लेता मैं। यू डोंट लाइक, आपको अच्छा नहीं लगता? तो मैंने कहा आई लाइक दैट पर्सन मोर हु हैज आस्क्ड मी नॉट टू टेक दिस। जिस व्यक्ति ने मुझे नहीं खाने के लिए कहा है, आई लाइक दैट पर्सन मोर देन ओनियन गार्लिक। तो अब उसके ऊपर तर्क वितर्क शुरू हुआ आधे घंटे तक की, बहुत से कोटेशंस देने शुरू किए कि ओनियन में और गार्लिक में क्या क्या गुण हैं, सद्गुण। तो मैंने पूछा कि देखिए आप ये प्याज लहसुन को लेके इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? भाई ठीक है मैं नहीं ले रहा, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं आपको तो नहीं बोल रहा, अभी मैं आपको तो नहीं बोल रहा, ये मेरा पर्सनल चॉइस है। अब मुझे अक्सर लोग ये चीज को लेकर बहुत तर्क वितर्क शुरू करते हैं। तो मैंने पूछा कि कितने ऐसे लोग हैं भारत में जो कितनी चीजें नहीं खाते, जीवन भर त्याग दिए, उनको लेके कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, ये प्याज लहसुन को लेके होता है। अभी मैं कितने लोगों को जानता हूं जो दही बिल्कुल नहीं खा सकते, यहां कोई है ऐसा? ये आप लोग कोई ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो दही बिल्कुल चख नहीं सकता, कुछ हो जाता है दही, दही और उनका केमिस्ट्री मैच नहीं करता। कई हैं जो ये मेरा पर्सनल भी है, मैं रियलाइजेशन बता रहा, कईयों को दूध में मलाई अच्छी नहीं लगती बिल्कुल, मुझे भी नहीं अच्छी लगती थी बचपन में। हमारे बॉम्बे में कॉलेज में प्रीचिंग करता था मैं, तो वहां पर एक हमने बेस शुरू किया था जहां पर विद्यार्थियों के लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रसाद बनाया करते थे। तो उसमें सुबह ब्रेकफास्ट में लंच अपना मिल्क होता था, दूध, तो ये स्टूडेंट ये मलाई, इसे इतनी ज्यादा वो नौजिया या जो कुछ क्रिएट करता था इसके अंदर कि वो चलनी खरीदी उसने और वो ब्रेकफास्ट में चलनी लेके आता, वो जो दूध सर्विंग करते तो वो चलनी वो गिलास के ऊपर रख, तो सभी देखिए ये चलनी क्यों लेके आ रहा है ब्रेकफास्ट में, फिर समझ में आएगी इसको ये मलाई बिल्कुल पसंद नहीं। और कई लोग ज्यादा डाल जाओ, डालो थोड़ी मलाई, तो उसके बगल वाला क्या करता, वो जितनी मलाई चलनी में अटक जाती वो सारी मलाई लेके अपने इसमें डालता, तू दूर बैठ मेरे से। तो अब कितने हैं जिनको दही नहीं अच्छा लगता है, दूध की मलाई नहीं अच्छी लगती, क्या कुछ नहीं अच्छा लगता। अब उसके ऊपर तो कभी कोई युद्ध नहीं छिड़ता कि ये क्यों नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन ये प्याज लहसुन का विशेष और चाय कॉफी का इसलिए विशेष क्योंकि ये अध्यात्म से संबंधित है, इसका कनेक्शन भगवान से। तो जो भी कई बार भगवान से कुछ संबंधित हो तो उसके ऊपर बहुत से प्रश्न उठते हैं। तो यहां पर अर्जुन अपनी आसक्ति को जस्टिफाई करना शुरू किए, प्रथम अध्याय स्टार्टेड जस्टिफाइंग थ्रू धर्मशास्त्र। और उसके पश्चात हुआ क्या, क्योंकि वो भौतिक स्तर पर इसको जस्टिफाई कर रहे थे ये सब लौकिक तर्क लगाकर, तो इसके पश्चात उनकी स्थिति प्रथम अध्याय में देखी गई, भ्रमित अवस्था। तो ये आप सीक्वेंस ध्यान में रखिए, अर्जुन दृष्टिपात से आसक्ति, आसक्ति से उन्होंने लौकिक तर्क देना शुरू किया अपनी आसक्ति को प्रबल बनाने के लिए और भगवान को ये दिखाने के लिए कि मैं ये जो अपनी आसक्ति दिखा रहा हूं, ये आप मत समझिए कि ये मेरी कोई कमजोरी है, तो इसलिए तर्क। परंतु क्योंकि वो तर्क वो बेबुनियाद था, लौकिक था, इसलिए भ्रमित, फिर भ्रमित हो गए। और भ्रमित अवस्था के पश्चात दुविधा मन स्थिति अर्जुन की, जो हम दूसरे अध्याय में अर्जुन की दुविधा मन स्थिति देखे, अर्जुन ये भी निर्णय नहीं ले पा रहे कि क्या मुझे इन्हें मारना चाहिए या इनके द्वारा मुझे मरना चाहिए। और अंततः फिर अर्जुन अपनी उस दुविधा मन स्थिति के पश्चात शरणागत हुए, शरणागति। तो जो पिछला श्लोक कार्पण्य दोष वो कौन सा है? शरणागति। और प्रथम अध्याय से इस श्लोक तक आने के लिए अर्जुन को इन सब स्थितियों से गुजरना पड़ा। तो ये एक ओवरव्यू दे दिया अर्जुन की स्थिति का, शरणागति तक की स्थिति का। ये क्यों दिया? क्योंकि अब भगवान श्री भगवान उवाच शुरू होने वाला, भगवान अपना गीत सुनाने शुरू करने वाले हैं। तो ये हम भी यदि अपने जीवन में देखें, हम जो साधना भक्ति में लगे हैं, भगवत गीता का श्रवण करना चाहते हैं अर्जुन के पद चिन्हों पर चलते हुए, तो हमें भी देखना है कि क्या मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा आसक्त हो रहा हूं इस भौतिक संसार में, और आसक्ति के कारण क्या मैं उसे जस्टिफाई कर रहा हूं, और फिर भ्रमित अवस्था में, दुविधा मन स्थिति में। तो अंततः इन सब समस्याओं का एक हल शरणागति। और उसके पश्चात फिर अर्जुन श्रवण करना शुरू किए। तो अब श्रवण को यदि हम लें तो श्रवण दो प्रकार के यहां पर देखे जाते हैं। एक है सहज श्रवण और एक है शरणागत श्रवण। सहज श्रवण आप समझे इसका अर्थ क्या है? एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना सहजता से, जैसे टनल से एक एक तरफ से गाड़ी जाती दूसरे से बाहर आ जाती है, वैसे सहज श्रवण को अंग्रेजी में कहेंगे कैजुअल लिसनिंग। कैजुअल लिसनिंग होता है ना, जैसे कई बार आप देखो पिताजी पेपर पढ़ रहे हैं और छोटा बच्चा वो बोल रहा है अपना जो भी स्कूल में हुआ ये वो, तो पिताजी हाँ हाँ हाँ, पेपर उनका मेन श्रवण कहाँ चल रहा है? पेपर में। और बच्चा जो बोल रहा है उसके उसमें हामी भरे जा रहे, वो मशीन के जैसे चल रहा है हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जानते जो भी बोल रहा है इसका कोई तथ्य नहीं है। तो कई बार हमारा लिसनिंग कैजुअल लिसनिंग जैसा हो जाता है कि हाँ ये भगवत गीता में कितनी बार यही सुना रहे हैं, 2 साल हो गया ये, वही अर्जुन, वही धृतराष्ट्र, वही संजय, वही कृष्ण। तो कई बार हमारा लिसनिंग कैजुअल हो जाता है। When the listening is casual, we may have a casualty. If you are casual in devotional service, might lead to casualty. तो यहां पर अर्जुन का श्रवण कैसा अब होने वाला है? शरणागत श्रवण। तो सहज श्रवण के कुछ उदाहरण देखेंगे हम। ये सबसे पहला उदाहरण सहज श्रवण का ये है कयाधु। कौन जानता है इनको? हाँ हाँ, हिरण्यकश्यप की पत्नी अर्थात प्रहलाद महाराज की माताजी। तो इनका श्रवण सहज श्रवण की कैटेगरी में कैसे आया? हाँ, नारद मुनि से इन्होंने सुना। तो नारद मुनि, कथा ऐसी है कि देवतागण जब देखे कि हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए चला गया है, और तपस्या किस लिए हिरण्यकश्यपु कर रहा है? ये सब देवताओं को मारने के लिए, विष्णु इनको मारने के लिए, देवताओं को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए गया। तो यहां पर कयाधु के गर्भ में हिरण्यकश्यपु का शिशु कौन? प्रहलाद। वो तो देवताओं को नहीं पता था कि प्रहलाद भगवान श्री विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बनने वाला है। तो उन्हें लगा कि एक पहले से बाप परेशान करने के लिए निकल पड़ा है, तो ये जूनियर हिरण्यकश्यपु पैदा होने वाला है, तो खत्म करो। तो कयाधु को ये देवताओं ने गिरफ्तार जैसे कर लिया, और नारद मुनि ने फिर छुड़ाया ये कहते हुए कि नहीं, आप लोग जानते नहीं कि कयाधु के गर्भ में जो शिशु है उनके वजह से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में अवतरित होंगे। और फिर कयाधु को नारद मुनि ने आश्रय दिया अपने आश्रम में, गर्भवती कयाधु को, और कयाधु को फिर भागवत कथा नारद मुनि ने सुनाई। परंतु हम कहां सुनते हैं कयाधु हिरण्यकश्यपु को बोलती है कि तुम विष्णु के शरण जाओ? दोनों ने श्रवण किया, प्रहलाद महाराज ने श्रवण किया कहां? कयाधु के गर्भ में। प्रहलाद महाराज कयाधु के गर्भ में वो सुन रहे नारद मुनि को, कयाधु जो बाहर वो सुन रही है। अब किसका श्रवण ज्यादा पक्का होना चाहिए था? कयाधु का, क्योंकि डायरेक्टली नारद मुनि कयाधु को सुना रहे थे। प्रहलाद महाराज को वहां पर कोई ऐसे अंदर कोई ट्रांसमिशन नहीं भेजा था अलग से स्पीकर वगैरह। अब देखो उस समय की टेक्नोलॉजी देखो, आजकल हम टेक्नोलॉजी पर गर्व करते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी देखो कहां से कहां कुछ टेलीकास्ट होता है, लाइव टेलीकास्ट। यहां देखो गर्भ के अंदर का शिशु वो सुन रहा है लेक्चर। हम कई बार तो स्ट्रीट पे बैठे बैठे सुन नहीं पाते ठीक से। तो कयाधु का जो श्रवण बताया गया है वो सहज श्रवण था, वो शरणागत नहीं हुई भागवत कथा के, भागवत कथा पे शरणागत नहीं हुई कयाधु, इसलिए सहज श्रवण था। उत्तरा ये कौन थी? कौन थी? नहीं नहीं नहीं, मेरा यहां पे एक गलती से टाइप कर दिया, सुभद्रा। उत्तरा नहीं, सुभद्रा होनी चाहिए। हाँ सुभद्रा, अभिमन्यु की मां ना। हाँ सुभद्रा। तो सुभद्रा को अर्जुन बता रहे थे क्या? चक्रव्यूह, चक्रव्यूह कैसे बनाया जाता है, कैसे भेदा जाता है, कैसे उसमें से निकला जा सकता है। तो अर्जुन सुभद्रा को सुना रहे थे। सुभद्रा है ना, बराबर है ना? हाँ अभिमन्यु गर्भ में थे, अभिमन्यु गर्भ में थे। तो यहां पर देखो प्रहलाद अभिमन्यु ये सब कहां पे हियरिंग चल रहा है इनका? सब गर्भ में चल रहा है हियरिंग। तो सुभद्रा वो सुनते सुनते सो गई, वो सुनते सुनते सो गई। तो अर्जुन सुना रहे थे कि चक्रव्यूह के विषय में, और वो उस समय सो गई सुभद्रा देवी जब अर्जुन ये सुनाने वाले थे कि चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो अर्जुन ने देखा सुभद्रा सो गई, तो अर्जुन फिर बंद किए सुनाना। तो इसलिए अभिमन्यु वो चक्रव्यूह को भेद तो सके परंतु बाहर नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि उनकी माताजी सो गई थी। जब उनके पिताजी सुना रहे थे तो इनकी माताजी सो गई थी, इसलिए लेक्चर के समय सोना माइट कॉस्ट समवन्स लाइफ, घातक हो सकता है बहुत। तो यहां पर ये क्षमा करना, गलती से उत्तरा टाइप हो गया। सुभद्रा, सुभद्रा देवी उनका श्रवण सहज श्रवण बताया गया है। और धृतराष्ट्र, इनको तो हम जानते ही हैं, इन्हीं से तो भगवद गीता प्रारंभ हुई। धृतराष्ट्र उवाच, तो धृतराष्ट्र जिनको आंखों देखा हाल सुनाया गया, दिखाया गया संजय, परंतु धृतराष्ट्र बिल्कुल शरणागत नहीं हुए भगवान श्री कृष्ण के। तो पूरी गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी, संजय ने भी सुनी, अर्जुन ने भी सुनी, परंतु संजय और अर्जुन का एक ही मत, भगवान को शरणागत होना। धृतराष्ट्र वो फिर भी वो उसी आशा में था कि मेरा दुर्योधन राजा बनेगा, राजा बेटा, मेरा राजा बेटा राजा बनेगा एक दिन, पूरी भगवद गीता सुनने के बाद। अब शरणागत श्रवण, इनके कुछ उदाहरण, प्रहलाद महाराज, इनकी चर्चा हमने कर ली कि इतने शरणागत कि अपनी माता के गर्भ में इन्होंने जो श्रवण किया, उसके पश्चात नारद मुनि कभी कोई क्लास दिए नहीं। प्रहलाद महाराज पैदा होने के बाद नारद मुनि कभी आए नहीं प्रहलाद महाराज को कुछ सुनाने के लिए। जो कुछ उन्होंने सुना बस वो जो गर्भ में सुना अपनी माता के। और देखिए भागवत में यदि आप पढ़ेंगे प्रहलाद महाराज की प्रार्थना या प्रहलाद महाराज का साक्षात्कार, उतने से श्रवण से प्रहलाद महाराज का साक्षात्कार देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इसलिए शंड और अमरक जो दो शिक्षक हिरण्यकश्यपु के स्कूल के, वो और प्रहलाद महाराज के सहपाठी, ये प्रहलाद महाराज को पूछा करती, ये सब तुमको कहां से तुमने सीखा ये विष्णु भक्ति, तुम तो हमारे साथ, तुम तो हमारी तो लंगोटिया यार हो, तुम हमारे साथ तो तुम तो बड़े हुए पैदा हुए, और यहां पर तो कोई वैष्णव को तो एंट्री है ही नहीं। तुम्हारे बाप को देखो, किसी को एंट्री देते ही नहीं हो, तो सब भाग चुके यहां वहां, तो ये तुमने सीखा कहां पर। तो देखिए जो कुछ श्रवण प्रहलाद महाराज ने ऐसा शरणागत श्रवण किया कि पूरे जीवन भर वो श्रवण का स्टॉक उन्होंने यूज किया, इसे कहते हैं शरणागत श्रवण। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज ने भी नारद मुनि से श्रवण किया। इनमें हम शरणागत श्रवण इसलिए इसे कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में अपनाया, बाकी जो सहज श्रवण की श्रेणी के हैं उन्होंने अपने जीवन में नहीं अपनाया उसे। अब चक्रव्यूह इन सब से सुभद्रा का क्या मतलब, बोले कुछ ये बताते कि कैसे हलवा पकाया जाता है किचन में, कुकिंग वगैरह, तो वो सब सुभद्रा देवी का कुछ इंटरेस्ट होता। अब ये युद्ध भूमि पे चक्रव्यूह और ये सब, वो चक्कर में चली गई सुभद्रा देवी, इसलिए सो गई। अब ये जैसे प्रहलाद और ध्रुव महाराज को जो नारद मुनि ने कहा और जो उन्होंने सुना उनके मुख से, श्रीमुख से, वो उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। ध्रुव महाराज को जो मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहां जाकर तपस्या करो मधुबन में, और कैसे तपस्या करो, ये सब को ध्रुव महाराज ने पालन किया। तो शरणागत श्रवण का अर्थ है जब उसे अपने जीवन में कोई उतारे, उसे कहते हैं शरणागत श्रवण, नहीं तो सहज श्रवण। मृगारी, नारद मुनि फिर से ये शिकारी जो प्राणियों को अधमरा कर छोड़ दिया करता था, नारद मुनि ने मृगारी को कहा कि सबसे पहले तुम अपना धनुष तोड़ो, तो मृगारी ने धनुष तोड़ दिया। और फिर जो कुछ नारद मुनि ने मृगारी से कहा, मृगारी ने उसका इस प्रकार से पालन किया, क्या बोलते हैं मराठी में, काटो काट तंतोतंत, अच्छा तंतोतंत, ये महाराष्ट्रीयन वर्ड, मराठी वर्ड है, तो यथारूप पालन किया। इसलिए मृगरारी के उदाहरण में यह देखा जाता है कि जब नारद मुनि बहुत समय पश्चात मिलने आए मृगरारी को कि देखें मेरा शिष्य क्या कर रहा है, कितनी प्रगति की, तो गुरुजी आए हैं और मृगरारी अब संत बन चुका है, शिकारी से संत बन चुका है मृगरारी, और जब नारद मुनि को आते हुए देखता है तो रास्ते की जो चींटियां हैं, अब चींटियों को भी वो मारता नहीं, उनके ऊपर भी नहीं चलने कि उनकी उसकी चेष्टा होती है, तो चींटियों को वो वहां से सरका रहा है। अर्थात इसमें यह देखा जा रहा है कि एक है वपु सेवा और एक है वाणी सेवा। तो मृगरारी ने वपु सेवा से ज्यादा वाणी सेवा, वाणी सेवा क्या थी नारद मुनि की, कि नारद मुनि ने कहा था कि तुम किसी जीव पर प्रहार नहीं करोगे। तो हालांकि गुरुजी सामने हैं और शिष्य, गुरुजी आते हैं तो गुरुजी की वपु सेवा करने के लिए बहुत तत्पर रहता है शिष्य, परंतु मृगरारी ने अपने उदाहरण से दिखाया कि यदि गुरुजी का वपु भी आ गया है परंतु गुरुजी की जो वाणी सेवा है वो प्रथम, तो उसका पालन किया। क्यों? क्योंकि जो श्रवण किया मृगरारी ने वो श्रवण शरणागत श्रवण था, वो सहज श्रवण नहीं था। अर्जुन, इनका उदाहरण तो लेना ही है, इन्हें नहीं भूलना चाहिए, इनके वजह से ही तो आज का टॉपिक हम बोल रहे हैं इतना सब कुछ। अर्जुन जो कि शरणागत श्रवण किए, माता देवहूति किनसे श्रवण की, उनके ही पुत्र कपिल देव, कपिल मुनि, जो कि स्वयं भगवान श्री विष्णु उनके अवतार, तो माता देवहूति और अंततः श्रवण आचार्य, इनको तो हम भूल ही नहीं सकते। नहीं, आज थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा, ट्रेन में टाइपिंग कर रहा था। परीक्षित महाराज है, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन आचार्य है, परीक्षित महाराज। आज ये पूरा प्रेजेंटेशन मैं ट्रेन में बना रहा था तो इसलिए ट्रेन का असर भी आ गया। परीक्षित महाराज यहाँ पे होने चाहिए। तो परीक्षित महाराज जो कि श्रवण आचार्य, ये इसलिए इनको शरणागत श्रवण कहा गया है इनका, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में उस श्रवण को उतारा। अब आज का श्लोक हम लेते हैं, ये इसलिए हम चर्चा कर रहे थे क्योंकि पिछला, ये सब चर्चा मुझे पिछले बार भी करनी थी, समय कम था, इसलिए वो जो श्लोक पिछले हफ्ते का श्लोक थोड़ा स्पिल हुआ आज भी। तो आज का हमारा श्लोक, नहि प्रपश्यामि मम पुनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणा अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। तो इस आठवें श्लोक में अब अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, ये जो मैं अपनी स्थिति को देख रहा हूं, इनके सामने भीष्म द्रोण के सामने मेरी स्थिति ऐसी है, मेरी इंद्रियां जो हैं वो उशोषणम अर्थात सूख रही हैं, मेरा गला सूख रहा है, मेरी इंद्रियां सब सूख रही हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये दुविधा मन स्थिति और अपनी व्यक्त कर रहे हैं अर्जुन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब ये मैं आपको कहना चाहूंगा हे भगवान, कि यदि मुझे कोई पूरा राज्य दे दे बिना शत्रु के, असपत्नम रिद्धम भूमा, ये भूमि अर्थात पृथ्वी, इस पूरी पृथ्वी का राज्य दे दे बिना कोई शत्रु, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजा तो बहुत बन सकते हैं परंतु ऐसा राजा बनना जिसके कोई शत्रु न हो, ये बहुत दुर्लभ है ऐसा कोई राजा बनना। तो अर्जुन कहते हैं कोई यदि ऐसा राज्य भी मुझे मिल जाए कि जिसका मैं राजा बन जाऊं और कोई मेरा शत्रु न हो, वो भी मुझे नहीं चाहिए। और यहां तक कि अर्जुन बोलते हैं राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, यदि सुरों का राज्य, देवताओं का राज्य भी यदि मुझे मिल जाए ये भूमि तो छोड़ दीजिए, यदि देवताओं का भी राज्य कोई मुझे दे दे तो भी मैं नहीं वो राज्य चाहता, मैं इन्हें मारकर ऐसा राज्य नहीं हासिल करना चाहता। अर्थात यहां पर हम क्या देख रहे हैं, अर्जुन की विवशता की पराकाष्ठा, कि इतना प्रलोभन भी यदि कोई लाकर अर्जुन के सामने प्रस्तुत करता तो अर्जुन कहते नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ, इन्हें नहीं मारना मुझे, इन सब कारणों की वजह से भी मुझे इन्हें नहीं मारना। तो ये आज के श्लोक के कुछ महत्वपूर्ण शब्द, अर्जुन कहते हैं कि ये जो शोक मेरा है, उच्छोषणम अर्थात सुखा रहा है मेरी इंद्रियों को, और इस भूमि का राज्य और यदि सुरों के राज्य का अधिपति भी मुझे कोई बना दे तो भी मुझे वो नहीं चाहिए। तो शोक यहां पर दो प्रकार के शोक होते हैं, एक है भौतिक और एक है आध्यात्मिक। आपका प्रश्न होगा कि आध्यात्मिक कैसे शोक हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। भौतिक शोक का अर्थ है जो अब अर्जुन जिस शोक में है, अर्थात अपने शरीर से संबंधित जो शोक होता है, अर्जुन अपने शरीर से संबंधित ये शोक कर रहे हैं इसलिए ये भौतिक है। और जो आत्मा से संबंधित शोक होता है उसे कहते हैं आध्यात्मिक। अर्थात जब कोई भक्त किसी दूसरे भक्त से विप्रलंब भाव अनुभूति करता है, विप्रलंब भाव का अर्थ है वियोग, वियोग हो जाना, एक है संभोग और एक है वियोग, तो संभोग और वियोग ये विपरीत हैं। तो वियोग में वो शोक महसूस करता है, परंतु वो शोक भौतिक शोक नहीं है, वो किसका वियोग कर रहा है, शरीर का वियोग नहीं कर रहा, वो वियोग कर रहा है उस व्यक्ति के आत्मा का। इसलिए इसी अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम जो ये वियोग कर रहे हो, तुम जो ये शोक कर रहे हो, ये किसका शोक कर रहे हो, भीष्म और द्रोण इनको देखते हुए तुम क्या इनके शरीर का शोक कर रहे हो कि इनका शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन शरीर तो वैसे ही मरा हुआ रहता है, ये तो आत्मा है, वो शरीर को यहां वहां भगाता है, हम देखते हैं सुनते हैं चलते हैं क्या कुछ नहीं करते शरीर से, ये आत्मा के वजह से। तो भगवान अर्जुन से इसी अध्याय में कहते हैं कि यदि तुम भीष्म और द्रोण के शरीर के विषय में शोक कर रहे हो तो वो तो बिना आत्मा के मरा हुआ है, और तुम यदि कहो कि तुम आत्मा के विषय में शोक कर रहे हो तो आत्मा को तो तुम मार नहीं सकते, तो दोनों दृष्टिकोण से तुम्हारा यह शोक करना कोई इसकी बुनियाद नहीं है। अब जब हम आध्यात्मिक शोक की बात करते हैं, जैसे हमारे इतने सारे वैष्णव आचार्य इनका तिरोभाव हम मनाते हैं, तिरोभाव समझते हैं, उनके गुजर जाने की तिथि उसे तिरोभाव कहते हैं, डेथ एनिवर्सरी इंग्लिश में। तो वैष्णव आचार्यों का हम तिरोभाव मनाते हैं, वो उत्सव मनाते हैं, हम बोलते हैं ना कि भक्ति विनोद ठाकुर तिरोभाव महामहोत्सव की जय। अभी कोई कोई जानता नहीं होता उत्सव मना, वो महोत्सव, इसमें उत्सव क्या मनाना है, और उत्सव क्या फीस्ट, कीर्तन आरती डांसिंग कीर्तन फीस्ट हो रहा है। अब कोई यदि किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है तो उसमें सब लोग बोलते भी नहीं कुछ ज्यादा, देखा होगा किसी कोई गुजर जाता है तो लोग एकत्रित होते हैं तो ज्यादा बात नहीं करते, बस हाथ ऐसे फेरते रोना शुरू, समझ सकता हूं। ऐसे 5-5 मिनट बाद कुछ शब्द आते हैं बाहर, होता है। फिर 5 मिनट बाद ना, सबके साथ होता है। जैसे एक बार एक एक परिवार था, और इस परिवार में एक जो लड़की थी, उसकी शादी की उम्र आ चुकी थी, तो उसकी मौसी हर समय उसको ताने मारा करती थी कि सबकी शादी हो रही है, देख तुम्हारी तुम्हारी शादी कब होगी। तो किसी की भी शादी होती, शादी का सीजन जब, आजकल तो नहीं चल रहा है शायद, शादी का सीजन जब चलता, तो अब बारात निकल रही, शादी हो रही, तो ये जो इसकी मौसी, इस लड़की की मौसी, ये वो शादी को दिखाते हुए ऐसे कह, अगली तुम्हारी बारी है। हर समय उसको ऐसे करके, अगली बारी तुम्हारी है। तो अब हुआ क्या कि कुछ महीने बीते और वो घर के दादाजी गुजर गए, तो अब स्मशान भूमि में पूरा परिवार गया। तो अब ये मौसी और ये लड़की, तो मौसी भी रो रही है, तो ये लड़की ऐसे करती, अगली बारी तुम्हारी है। तो अब वैष्णवों का जो तिरोभाव होता है, उसमें उसे कहते हैं विरह उत्सव। ये देखिए, ये इसमें विरोधाभास आपको लगेगा, विरह और उत्सव। तो विरह भी है और फिर उत्सव भी मनाया जा रहा है। ये विरह किसका है कि ये जो वैष्णव, इनका संग अब छूट गया, तो उसका विरह है। तो वैष्णव का संग चला गया, उसका विरह है। और उत्सव क्या है कि वैष्णव भगवत धाम गए, कि वो भगवत धाम गए हैं, वो भगवान के धाम पहुंचे, वैकुंठ प्राप्ति उनको हुई है, तो उसका उत्सव मना रहे हैं। तो इसलिए ये मिश्रित भावनाएं होती हैं जब हम किसी महान वैष्णव का तिरोभाव मनाते हैं। तो वो पूर्ण आध्यात्मिक ही है, क्योंकि उसमें वो शोक तमोगुण का शोक नहीं है। जो भौतिक शोक है, ये तमोगुण का शोक है। इसलिए महाभारत में वर्णन है कि यहां पर अर्जुन शोक कर रहे हैं भगवत गीता सुनने के पहले। अब तक भगवत गीता भगवान की सुनी नहीं है, सुनने से पहले शोक कर रहे हैं। भगवत गीता सुनने के पश्चात अर्जुन ने शोक किया? हाँ किया। कब किया? अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई, अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई, अर्जुन फिर से शोक करने लगे, रोने बिलखने लगे। एक मध्व सन्यासी, वो इस पर विनोदी तरीके से टीका करते हुए कहते हैं कि जब अभिमन्यु की मृत्यु के समय अर्जुन रो रहे थे, तो वहां पर बाकी सारे पांडव भी, अब अभिमन्यु 16 वर्ष के केवल, इस प्रकार से निहत्ता उनको मार, छह छह शत्रु वो एक साथ घेराव कर कर मारे अभिमन्यु को, ऐसे नृशंस तरीके से। तो सभी वहां पर एकत्रित थे, अर्जुन रो रहे हैं, अर्जुन के पुत्र अर्जुन रो रहे हैं। तो भगवान वहां पहुंचे, भगवान भी रोने लगे। तो अर्जुन ने भगवान को देखा, ये क्यों रो रहे हैं? तो सब कुछ होने के पश्चात फिर वो भगवान से एकांत में पूछे, वो तो सब ठीक था, आप क्यों रो रहे थे? तो भगवान ने कहा, मैं इसलिए रो रहा था, पूरी गीता तुमको मैंने सुनाई, उसके बाद फिर रो रहे थे। मैं तुम्हारे ऊपर रो रहा था। परंतु अभिमन्यु के मृत्यु के पश्चात अर्जुन का जो रोना और अभी रोना, क्या अंतर है? अभी जो अर्जुन रो रहे हैं, इसमें अर्जुन ने अपना गांडीव छोड़ दिया, युद्ध नहीं करूंगा, यह निर्णय। परंतु अभिमन्यु के मृत्यु के पश्चात अर्जुन ने विलाप किया, परंतु विलाप के पश्चात अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, युद्ध नहीं छोड़ा, युद्ध भूमि को त्यागा नहीं। इसलिए वो शोक जो हमें हमारे कर्तव्य को से दूर ले जाए, वो है भौतिक शोक। और वो शोक, वो विलाप जो हमें हमारे कर्तव्य, क्योंकि स्वाभाविक है भाई, किसी का पुत्र इस प्रकार से मारा गया है तो स्वाभाविक है वो भावनाएं व्यक्त होनी। परंतु कर्तव्य नहीं छोड़ा अर्जुन ने, इसलिए जो दूसरी बार शोक अर्जुन ने किया वो भौतिक नहीं था। अच्छा, अब यहां पर ये दो मुद्दे हमारे सामने हैं, भौतिक समस्याओं का भौतिक हल और भौतिक समस्याओं का आध्यात्मिक हल। इस श्लोक से ये समझ में आ रहा है हमें कि अर्जुन के सामने यदि कोई ये हल रखे कि तुम्हें सुरों का राज्य मिल जाएगा यदि तुम इन्हें मारोगे तो, या पूरे भूमि का तो मिलने ही वाला है, देवताओं का राज्य मिल जाएगा, तो ये एक भौतिक हल अर्जुन की भौतिक समस्या का हुआ, हुआ कि नहीं? अर्जुन की भौतिक समस्या कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मेरे सगे संबंधियों को मुझे नहीं मारना है, ये भौतिक समस्या अर्जुन की। क्यों भौतिक? क्योंकि शरीर से संबंधित है। तो अर्जुन यहां पर उस भौतिक समस्या का एक भौतिक हल सामने रखे श्लोक में और कहते हैं कि यदि वो भौतिक हल भी मेरे सामने कोई प्रस्तुत करे तो भी मेरी समस्या सुलझने नहीं वाली। अर्थात अर्जुन इस श्लोक के द्वारा हमें क्या सिखा रहे हैं कि हमारी भौतिक समस्याओं का यदि हम भौतिक हल ढूंढें तो क्या होगा? इंद्रियाणाम उच्छोषणम। अर्जुन इस श्लोक में क्या कहते हैं कि इंद्रियां मेरी सूख रही हैं, ये भौतिक हल भी कोई समाधान नहीं। इसलिए भौतिक समस्याओं का आध्यात्मिक हल हमें ढूंढना है। क्या है आध्यात्मिक हल? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन कृष्ण सेवा, भगवान जो कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, वो सब कुछ, तो वो है आध्यात्मिक हल हमारी भौतिक समस्याओं का। अब भौतिक समस्याओं का भौतिक हल, इसके कुछ उदाहरण हम लेंगे कि कुछ लोग शास्त्रों में जिनका वर्णन कि जिनकी भौतिक समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने भौतिक हल की शरण ली। रावण इसने सीढ़ी बनानी शुरू की स्वर्ग तक जाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो इसको एंट्री मिलने नहीं वाली थी कुकर्मी, ऐसे कुकर्मी को स्वर्ग में कहां एंट्री मिलने वाली, तो इसने कहा मैं सीढ़ी बनाऊंगा यहां से। तो रावण ने अपनी भौतिक, उसको ये समस्या थी कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही, वहां का ऐश्वर्य मुझे नहीं मिल रहा, तो स्वर्ग का ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए उसने सीढ़ी बनाना शुरू किया रावण ने। एक आजकल के वैज्ञानिक भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि भौतिक समस्याओं का भौतिक हल ढूंढने का प्रयास करना। असफल रहा रावण, कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, उसे नहीं जा सका। हिरण्यकशिपु एक और उसी खानदान का, हिरण्यकशिपु इसने कौन सा भौतिक हल ढूंढने का प्रयास किया? अमर बनने का प्रयास किया। जैसे कि आप लोग इसके बारे में सुनोगे, वॉल्ट डिज्नी के कार्टून से, जो मिस्टर वॉल्ट डिज्नी अभी नहीं है वो, ये वॉल्ट डिज्नी का जब देहांत होने वाला था तो इसने इतने पैसे थे इसके पास, कार्टून बना बनाकर ये इतना पैसे वाला हो गया, दूसरों को कार्टून दिखा दिखा कर, उनका कार्टून बना बनाकर, तो इतने पैसे इसके पास के वैज्ञानिकों को इसने पैसे दिए और कहा कि मेरे शरीर को कुछ भी मत करना मरने के बाद, न तो दफनाना ना जलाना, कुछ ऐसे रसायनों में मेरे शरीर को रखो कि मेरा शरीर सड़े नहीं, गले नहीं, और जब भी तुम कोई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करो जिसके द्वारा तुम मृत शरीर को पुनर्जीवित कर पाओगे तो मुझे पुनर्जीवित करना, कार्टून बनाऊंगा। ये सबसे बड़ा कार्टून फिल्म था उसका खुद के ऊपर। सो वॉल्ट डिज्नी ही वॉन्टेड सो मच टू लिव अगेन एज वॉल्ट डिज्नी दैट ही पेड सो मेनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू दिस साइंटिस्ट जस्ट टू प्रिजर्व हिज डेड बॉडी सो दैट इन फ्यूचर वेन एवर दे कम आउट विद अ टेक्नोलॉजी दैट दे कैन ब्रिंग बैक अ डेड मैन अलाइव दैट दे शुड डू दैट। तब हुआ क्या कि उन्हीं के परिवार वाले वो सब उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था, इस शरीर को कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ था, तो परिवार वाले इतनी बिजली कौन बर्बाद करेगा, ये मरा हुआ सड़ा हुआ भी बंद कर दिया उन्होंने, खत्म वो शरीर। फिर सड़ने लगा और जो भी उनकी जायदाद थी वो सब इन्होंने बांट लिया आपस में, चलो अभी दफा करो, जो भी वॉल्ट डिज्नी को दफा किया गया, हो गया खत्म। तो ये एक भौतिक समस्या का भौतिक हल ढूंढने के लिए ये एक उदाहरण। हिरण्यकशिपु भी अमर बनना चाहता था, मैं इधर नहीं मरू, उधर नहीं मरू, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, आगे नहीं, पीछे नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, मरना पड़ा, फिर भी मरना पड़ा हिरण्यकशिपु को। धृतराष्ट्र ये भी, इसकी समस्या क्या कि इसका बेटा लार्ज राजा नहीं बन रहा, मैं नहीं बन पाया, मेरा बेटा भी नहीं बन पा रहा है, कोई भी नहीं बन पा रहा हमारे खानदान का, अरे कोई तो बनो राजा। और इसलिए ये युद्ध और इनको मारा जाएगा तो इसलिए ये लोग राजा बन पाएंगे, वो द्यूत क्रीड़ा, इनको वनवास भेजना, लाक्षाग्रह में मारने की कोशिश, विष पिलाकर मारने की कोशिश, सब भौतिक हल, सारे विफल रहे, ये धृतराष्ट्र। और आजकल का आधुनिक समाज, आजकल का आधुनिक समाज भौतिक समस्याओं के भौतिक हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। यदि बहुत ठंड है तो हीटर, और बहुत गर्मी है तो एसी, तो ये हीटर एसी के वजह से अब वो जो ग्लोबल वार्मिंग का लफड़ा चल रहा है, आप यदि जानते हैं कि वो ओजोन लेयर वो डिप्लीट हो रही, उसके वजह से क्या कुछ नहीं, वैज्ञानिक सारे चिंता में है, कोई कहता है अगले साल सब कुछ खत्म होने वाला है, कोई कहता है 2 साल बाद खत्म होने वाला है, वो 3 साल बाद खत्म होने वाला है सब कुछ, और एक कहते कहते वो वैज्ञानिक खत्म हो रहे हैं। तो वो इस ये सब जो समस्याएं उन्होंने उत्पन्न की, ये सब उनके आविष्कार, उसके वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हुई, और अब उन समस्याओं का फिर से भौतिक हल ढूंढ रहे हैं। आध्यात्मिक हल कोई ढूंढने, भौतिक हल ढूंढ रहे हैं फिर से उसका। और कई बार इनके भौतिक हल उसमें और समस्या रहती, जैसे ये मोटर गाड़ी का आविष्कार हुआ। मोटर गाड़ी का आविष्कार इसलिए हुआ क्योंकि पहले लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस पर सफर किया करते थे, तो उसके वजह से इनको 2 समस्या आई। एक समस्या कि बहुत धीरे यातायात, बहुत धीरे होता था, ये एक समस्या। और दूसरी समस्या, ये जो घोड़े ये मल त्यागते रास्ते पर, तो पूरा रास्ता ये घोड़ों के मल के साथ या बैल या इनके मल से भरा हुआ रहता। तो रास्ते साफ होने चाहिए, रास्ते साफ होने चाहिए, इसलिए मोटर गाड़ी। हवा का क्या हुआ, वातावरण प्रदूषित। तो रास्ते साफ है, वातावरण प्रदूषित। और पहले वो बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी वो धीरे धीरे बेचारे चलते थे, एक्सीडेंट भी होता तो क्या होता था। अब प्रभुपाद कहते ब्रेक नेक स्पीड, मैन इज गोइंग एट ब्रेक नेक स्पीड, मतलब इसका क्या है, ये अब एक्सीडेंट होता है तो सब कुछ खत्म। तो अब उन्होंने वो भौतिक समस्या का भौतिक हल ढूंढा जिसमें और भौतिक समस्या उत्पन्न हुई, इतने रोड एक्सीडेंट्स, और वही अपनी गाड़ी में बैठकर डॉक्टर के पास जा रहा है कि ये जो मेरे फेफड़े हैं वो भर चुके हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ये सब हो रहा है आधुनिक समाज में, ये देखा जा रहा है। अब भौतिक समस्याओं का आध्यात्मिक हल, जैसे ध्रुव महाराज की भौतिक समस्या थी, क्या समस्या थी कि उन्हें राज्य चाहिए था ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य, क्योंकि उनके सौतेली मां ने उनका इंसल्ट कर दिया, तो उनकी भौतिक समस्या। परंतु उन्होंने हल नारद मुनि और आध्यात्मिक तरीके से, इसलिए ध्रुव महाराज वो अंततः भगवत धाम उन्हें प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक हल इसका ढूंढा। प्रहलाद महाराज, जो भी उनके ऊपर भौतिक समस्याएं आई या डाली गई, वो केवल भगवान को शरणागत हुए। जब उन्हें वो ऊपर चोटी से फेंका गया या विष पिलाया गया या अग्नि में फेंका गया, जो भी कुछ किया, वो केवल भगवान को शरणागत। ऐसा नहीं कि वो वहां पर फायर ब्रिगेड को बुलाया जब अग्नि में उनको फेंका गया तो अरे कोई ये फायर को कम करो, नहीं, वो भगवान को शरणागत, भगवान से ही उन्होंने सारे हल ढूंढे। द्रौपदी, द्रौपदी की भौतिक समस्या हम जानते हैं, वस्त्र हरण का प्रयास दुशासन कर रहा था, और द्रौपदी अंततः कोई हल सामने नहीं, भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने पुकारा और तब जाकर उनकी समस्या सुलझी। अम्बरीश महाराज इनका उदाहरण है। दुर्वास मुनि, उन्होंने वो राक्षस पैदा कर दिया अपने बाल से, और वो राक्षस अब मारने जा रहा था अम्बरीश महाराज को, तब अम्बरीश महाराज किसके शरण गए, भगवान श्री कृष्ण के शरण, जो हर समय वो भगवान के शरण में रहते ही हैं। तो अम्बरीश महाराज का उदाहरण है। और ब्रजवासी, वृंदावन में जब भी कोई राक्षस आता, इंद्र जो उन्होंने वो संवर्तक बादल को भेजकर बाढ़ वृंदावन में कर दी, उस समय भी ब्रजवासी उन्होंने आध्यात्मिक हल इसका ढूंढा। अच्छा, अब ये एक दूसरी स्थिति है, आध्यात्मिक समस्याओं का भौतिक हल। अक्सर हम हमारी साधना भक्ति में हमारी आध्यात्मिक समस्याएं आती हैं कि जप में नींद आना, श्रवण में नींद आना, जप में कोई रुचि नहीं, श्रवण में कोई रुचि नहीं। कई बार हम इन समस्याओं को, हालांकि ये आध्यात्मिक समस्याएं इसे नहीं कहेंगे, अध्यात्म में हमारी समस्याएं, आवर प्रॉब्लम्स इन स्पिरिचुअल लाइफ, तो उसका हम कई बार भौतिक हल ढूंढते हैं। हाँ, कुछ हद तक भौतिक हल ढूंढना चाहिए, परंतु अंततः ये जो श्रवण और कीर्तन में टेस्ट आना, ये केवल भगवान की कृपा से हो पाएगा। जैसे कई बार हमको बोला जाता है कि आप जप करते समय ठीक से ऐसे बैठिए, नहा धो के बैठिए, सबसे पहले सुबह सुबह नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर ठीक से कोई सहारा नहीं लेते हुए जागरूक अवस्था में, तो ये सब कुछ भौतिक सहारे हैं हमें रुचि पैदा करने के लिए। परंतु केवल इसी से कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होने वाला। अब हो सकता है कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, ठंडे ठंडे पानी से स्नान कर ले और फिर तिलक वगैरह लगाकर एकदम सीधा बाम्बू की तरह बैठ जाए, और फिर वह कहा कृष्ण तो दिखाई नहीं दे रहे, उनकी बंसी तो सुनाई नहीं दे रही। तो हमारी आध्यात्मिक समस्याओं का ये हमें भौतिक हल पर निर्भर नहीं होना है। इसलिए आध्यात्मिक समस्याओं का आध्यात्मिक हल, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति, और उस शरणागत भाव से, जैसे द्रौपदी, अम्बरीश महाराज, उन सब का उदाहरण हमने लिया, उस भाव से जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर आज का जो श्लोक हमने लिया, इसमें अर्जुन ही स्वयं प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि कोई मेरी इस भौतिक समस्या का भौतिक हल ला कर दे, कौन सा भौतिक हल? राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, यदि देवताओं का राज्य लाकर दे दे, भौतिक हल यह हो गया, फिर भी ये समस्या मेरी सुलझेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अर्जुन जान गए कि हे भगवान, आप ही जो आध्यात्मिक हो, आप ही मेरी इस भौतिक समस्या का हल कर सकते हो। इसलिए फिर से हम ये सीक्वेंस देखेंगे, भौतिक समस्याओं का भौतिक हल, उसके उदाहरण हमने लिए, भौतिक समस्याओं का आध्यात्मिक हल, आध्यात्मिक समस्याओं का भौतिक हल। हमारी साधना में हम कई बार केवल उस पर निर्भर होते हैं, परंतु अंततः अर्जुन जो कर रहे हैं वो उनकी जो आध्यात्मिक समस्या, क्या समस्या थी? कि वो भगवान को शरणागत नहीं हुए थे, तो अब शरणागत हुए हैं, वो उनके आध्यात्मिक, उनका हल अब उन्हें मिलेगा भगवद गीता भगवान जब सुनाना प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? एक महत्वपूर्ण सूचना है।